भगवान कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशि निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगच्छर। ये हमारे कर्मयोग का प्राण श्लोक है। कर्मयोग मतलब क्या, इस श्लोक में बताया गया है। तो मयि सर्वाणि कर्माणि, सारे कर्म, सन्न्यास अध्यात्म चेतसा, सारे के सारे मेरे लिए करो। अच्छा, कर्मयोग क्या है, क्या कहना चाहते हैं भगवान यहां? अब उन्होंने कई बार पढ़ा है ना इसको, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, सारे कर्म मेरे को अर्पण करो। मेरे को अर्पण करने का मतलब क्या है? भगवान की खुशी के लिए करो। भगवान की खुशी के लिए हम कैसे कर सकते हैं? इमीडिएटली प्रश्न आएगा, कैसे करेंगे? यहाँ पर शंकराचार्य जी कहते हैं, विवेक बुद्धिया अहम कर्ता ईश्वराय भृत्यवत करोमि इति अनया बुद्धिया, मैं सर्व कर्म ईश्वर के लिए सेवक की तरह कर रहा हूं, सेवक की तरह कर रहा हूं। आपको अपने आप को सेवक मानना होगा, आप भगवान के नौकर होगे। नौकर क्या करता है? हर काम मालिक की खुशी के लिए करता है। तो हमने एक काम किया, भगवान खुश होंगे कि नहीं होंगे, हम अपने आप को सेवक मान लें तो क्या होता है? फिर सारे विचार जो है अपने एम्प्लॉयर के प्रति चले जाते हैं, उनकी खुशी के लिए। ये छोड़ के कोई उपाय नहीं है। आप एक कर्म ऑफर कर दोगे, दो कर्म ऑफर कर दोगे, उससे नहीं होगा। एक आदमी एक प्रतिष्ठान को दान देता है, एक बार दान दिया चला गया, अगर वो प्रतिष्ठान में ही लग गया, अब उसके सारे काम, उसका पैसा, उसके विचार, सब कुछ वो प्रतिष्ठान के लिए हो गया ना। आप जैसे जहां काम करते हो तो क्या करते हो? जब वहां रहते हो तो ऑफिस के अंदर, तो ऑफिस के बारे में ही सब सोचना पड़ता है, कैसे मेरा मालिक खुश होगा। ठीक वही आपको यहां करना है, मेरा मालिक कैसे खुश होगा। निराशी, जब आप काम करेंगे तो आप आशा नहीं रखेंगे। किसकी आशा नहीं रखेंगे? कर्म फल की आशा नहीं करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में क्या आने वाला है? कर्म फल आएगा फ्यूचर में, कर्म करने के बाद कर्म फल आता है, पहले तो आएगा नहीं। तो जब हम कर्म करते हैं तो किस चीज की आशा करते हैं? फल कब आएगा, कितना आएगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कहां मिलेगा, ये सोचते रहते हैं। निर्ममा निर्ममा इतना मिलेगा, फिर हमारा क्या होगा, इतना मिल जाएगा। आपको हमने कहानी सुनाई थी ना, एक दूध वाले की कहानी नहीं सुनाई थी? सुनाई थी, हाँ सुनाई थी। कौन सी? हाँ, एक दूध वाली थी, वो दूध अपना लेके जा रही थी, गांव में जाना था उसको, थोड़ी देर हो गई, सोचा थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, एक पेड़ के नीचे अपना दूध रख दिया। हाँ, उसको जो है सोने लगी, वो सोते सोते सी स्टार्टेड ड्रीमिंग, सपने देखने लगी, इतना दूध बेच के इतने पैसे मिलेंगे, फिर इतना, फिर गाय बढ़ जाएंगी, फिर इतना दूध होगा, फिर ये होगा, फिर होगा, नौकर चाकर रखेंगे, बात नहीं सुनेंगे तो एक लात मारूंगी। जो दूध था वो भी गया, सी वॉज ड्रीमिंग, दूध सामने रखा हुआ था, उसने लात मार दी उसको, दूध को, दूध गया। तो पास्ट के बारे में भी नहीं सोचना है, क्या क्या होगा नहीं होगा। युद्धस्य बिगच्छ्वरः, मतलब इन प्रेजेंट के अंदर भी आप एक्साइटेड नहीं हो। कई बार बच्चे परीक्षा देने जाते हैं, अरे सब कुछ आता मेरे को, नॉट एक्साइटेड, एक्साइटमेंट हो जाता है, फिर कैलकुलेशन शुरू हो जाता है, 99.3 99.5 आ जाएगा अपने को नंबर, एक्साइटमेंट बिगड़ जाए। अब इसके बाद कहते हैं, 31वें श्लोक में कहते हैं, ये मैं मत इदम नित्यम उन्नति मानवा, मानवा जो भी मनुष्य जो मैंने कहा है वो अगर करे तो क्या होगा, श्रद्धावंत तो अनसूयंत, श्रद्धावंत मतलब उसका फेथ होना चाहिए कि भगवान ने कहा है मेरी भलाई के लिए ही है, मेरे को करना चाहिए, अनुसूयंत उसमें कोई नुक्स ना निकाले। बहुत लोगों का ऐसी आदत होती है ना, कुछ भी खाओ उसमें नुक्स निकालते हैं, खाना कैसा बना है, सब ठीक है, थोड़ा सा मिर्चा थोड़ा ज्यादा हो गया है, अनुसूयंत बोले ये अच्छी चीज है, इसमें दोष नहीं निकालो। मुच्यंत तेपी कर्म भी, मुच्यंत तो वो मुक्त हो जाते हैं, किससे, कर्म भी, जितने भी आपने कर्म किए हैं ना। शंकराचार्य जी कहते हैं, पाप और पुण्य रूपी जो भी कर्म आपने किए हैं, भगवान ने जैसा कहा है अगर आपने किया तो क्या होगा, सारे के सारे आपके कर्म का भस्मीभूत, वॉर स्प्राउट नहीं होंगे। क्या है साइंस इसके पीछे, कौन बताएगा हमें साइंस क्या है? अगर हम भगवान के लिए काम करें तो क्या लाभ क्या होगा मेरे को, लाभ तो पहले पता लगना चाहिए ना। क्या लाभ होगा हमें बताओ, भगवान की अगर बात माने तो क्या मिलेगा हमको? मन की शुद्धि होगी। मन की शुद्धि का मतलब क्या होता है?
भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, एक तो कोई गलत काम करेंगे ही नहीं।
एक तो गलत काम नहीं होगा, बहुत अच्छा। दूसरा,
दूसरा फल की चिंता नहीं करेंगे।
फल की चिंता तो नहीं करेंगे, वो तो कर्म करने के टाइम में,
जो फल आएगा उसको प्रसाद के रूप में।
सब ठीक है, कैसे कम होगी? हाँ, अज्ञान कम होगा, वासना कम होगी, मगर कैसे कम होगी?
मन शांत होगा ना, तो फिर अज्ञान आस्ते।
आपको देखो ये जानना है, मैंने बहुत बार आप लोग को बताया है, आप ध्यान से पकड़ो, मैं मुझे याद नहीं पड़ता मैं कितनी बार आपको समझाया हूँ इसको।
दो चीज
नहीं, अटैचमेंट नहीं, निषिद्ध कर्म नहीं होगा, काम्य कर्म नहीं होगा। कौन मेरे मन को दूषित करता है? काम्य कर्म करता है। काम्य कर्म जो है वो दूषित करता है हमारे मन को, वासनाएं बढ़ाता है। अगर हम कर्म योग करेंगे तो उसके अंदर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करेंगे तो निषिद्ध कर्म नहीं होगा। ये तो आपको समझ में आ रहा है ना, किसी को नहीं समझ में आया तो अभी हाथ उठाओ। सब लोग समझ रहे हैं, सब यहां समझ में आता है, मगर बाहर जाके फिर वही शुरू हो जाता है। तो फिर पढ़ाने का मतलब क्या हुआ? जो विज्ञान है, जो भगवान कहना चाहते हैं, अगर हम उसको ठीक से समझते हैं तब तो हम उसको लगाएंगे काम में ना। तो पहला काम क्या होगा कि निषिद्ध कर्म नहीं होंगे, वो तो बहुत साफ समझ में आता है। भगवान क्या करने को कह रहे हैं, अपनी प्रसन्नता के बदले भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, बस इतना ही कहने को कह रहे हैं बस। अभी आप कैसे कर्म करते हो, शिक्षक के लिए तो नहीं करते ना, अपने लिए करते हो। भगवान किसके लिए करने को कह रहे हैं, कोई नया कर्म करने को कह रहे हैं, जो आप कर रहे हो वही करो, मगर केवल आप ये सोचो कि ये काम से भगवान खुश होंगे कि नहीं, बस। अगर आपका मन कहे खुश हो रहे हैं तब तो वो काम कर दो, और अगर आपका मन कहे कि नहीं खुश नहीं हो रहे हैं तो वो काम गलत है। एक तो ये हुआ, निषिद्ध कर्म आपसे नहीं हुआ, काम में कर्म भी नहीं होगा। काम में कर्म क्यों नहीं होगा, क्या विज्ञान है, कौन बताएगा? अब उत्तर तो हमने बता दिया, काम में कर्म नहीं होगा। विज्ञान क्या है इसके पीछे में, क्या साइंस है उसके पीछे में?
मतलब अपने लिए,
अपने लिए, ईगो सेंट्रिक डिजायर, अपने लिए करते हैं सब, हम करते हैं अपने लिए करते हैं। आप अगर प्रकृति को देखोगे तो सारी प्रकृति दूसरों के लिए काम कर रही है, नजर में आता है आपको, सारी प्रकृति दूसरों के लिए काम करती है। आप मानते हो इस बात को कि नहीं मानते हो? पेड़ जो फल देते हैं किसके लिए देते हैं, दूसरों के लिए। सूर्य चंद्रमा पृथ्वी अन्न देती है किसके लिए, अपने लिए तो नहीं, दूसरों के लिए। तो सारी प्रकृति जो है दूसरों के लिए कर्म करती है, केवल एक एक्सेप्शन है, कौन है वो,
मनुष्य।
मनुष्य जो है वो दूसरों के लिए नहीं करता है। वो किसके लिए करता है? अब भगवान से पूछो, सारी प्रकृति दूसरों के लिए कर्म कर रही है और मैं अपने लिए कर रहा हूं, आप खुश हो? बताओ उत्तर क्या होगा। भगवान ने प्रकृति ऐसी बनाई है कि सब के सब जो है दूसरों के लिए कर्म कर रहे हैं, और हमारी जो देह है उसको जो संघात कहते हैं, कोई भी संघात जो होता है वो दूसरों के लिए होता है। एनी असेंबलेज इज फॉर अदर्स, एनी असेंबलेज दूसरों के लिए होता है। तो हमारा शरीर भी तो एक असेंबली ऑफ मेनी पार्ट्स, तो क्या हम दूसरों के लिए काम करते हैं? जहां दूसरों का काम होता है, मिशन के लिए आओ तो आपके पास समय नहीं होता है। अब बताओ भगवान क्या कहेंगे, बताओ मेरे को। अगर इस चीज को आप समझ लो कि सारी प्रकृति के अंदर दूसरों के लिए काम होता है, भगवान ने हमको बुद्धि दी है, हमको कर्म करने के अंदर फ्रीडम दी है, स्वतंत्रता दी है, तो इसका यह तो मतलब नहीं होता है कि हम उस स्वतंत्रता का लाभ उठा लें।
पशु पक्षी भी तो अपने लिए काम करते
हैं। नहीं करते हैं। दूसरों के लिए करते हैं, सबको काम दिया हुआ है, सब काम करते हैं। वॉर्म्स जो है ये जमीन के अंदर खोद खोद के उसको जो है अलग करते हैं, उनको फर्टाइल करते हैं। गाय आपको दूध देती है, घोड़ा आपका काम करता है, गधा काम करता है, क्या करता है, किसके लिए करता है? दूसरों के लिए करता है। अब मेरे को यह बताओ कि अगर आप इस तरीके सोचो कि सारी सृष्टि में ये नियम भगवान ने बनाया है, केवल मेरे को अधिकार दिया है कर्म करो नहीं करो या उल्टा करो, ये अधिकार मेरे पास है और किसी को नहीं है। कोई वृक्ष नहीं कह सकता कि मैं आपको फल नहीं दूंगा, केवल मनुष्य कह सकता है कि मैं सत्संग में नहीं आऊंगा, दूसरा नहीं कोई कह सकता है। आप पूछो अपने आप से, अगर मैं दूसरों के लिए काम नहीं करके अपने लिए काम करता हूं तो भगवान उससे खुश होंगे, खुश होंगे तो नहीं होंगे। ये सिद्धांत आपको समझ में आ जाएगा ना तो आपके काम कर्म भी खत्म हो जाएंगे। काम कर्म का ये मतलब नहीं होता है कि आप जो है आपको पैसे वगैरह नहीं मिलेंगे, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, मगर आपकी वासना फॉर्मेशन नहीं होगी, खत्म। वासना अगर फॉर्मेशन नहीं होगी, आस्ते 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 आपका मन शुद्ध हो गया, मन शुद्ध हो गया तो आप ज्ञान के अधिकारी। ज्ञान में कितना समय लगेगा?
कोई समय,
कोई समय नहीं है। ज्ञान क्या है? तत्त्वमसि, इतना ही ज्ञान है। तत्त्वमसि, यू आर दैट, आप ब्रह्म हो। कर्मयोग आपको अच्छी तरह से पता लगा। छह किस्म के कर्म है, हाँ बताइए क्या क्या है।
काम्य कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, निषिद्ध कर्म,
प्रायश्चित कर्म,
उपासना।
हाँ, छह कर्म है। तो नित्य और नैमित्तिक को दो को मिला के क्या कहते हैं? नियत कर्म। उपासना आपको करनी है, प्रायश्चित कर्म आपको करनी है। तो ये तो आपकी ड्यूटी है, ये तो करना ही है, ये चार करने ही आपको, ये आपके कर्तव्य कर्म कहे जाते हैं, इनको कर्तव्य करना ही है। मगर इसके अलावा जो हम काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म करते हैं, काम्य कर्म अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए कई कई हम गलत काम कर देते हैं, इनको भगवान कहते हैं बंद करो। तो कैसे बंद करें? कर्म योग जब करोगे तो बंद होगा, नहीं तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो भगवान ने फल भी बता दिया, श्रद्धावंतो अनुसूयन्ते मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। आपके जितने भी पाप और पुण्य हैं सबके सम खत्म हो गए। अन्यथा अगर नहीं करोगे तो क्या होगा? तो पाप पुण्य के लिए आपको फिर से विज्ञान साफ है, आपको समझ में आ रहा है पूरा। अगर कर्म योग करोगे तो भगवान बोलते हैं मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। कर्म भी का मतलब ऐसे मनुष्य भी पाप पुण्य पाप रूप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। कैसे मुक्त हो जाते हैं? कैसे मुक्त होते हैं? अभी आपको बताया कैसे मुक्त होते हैं। मन शुद्ध हो गया, मन शुद्ध जहां हो गया आपको ज्ञान मिल गया। ज्ञान क्या मिला? तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। अगर मैं ब्रह्म आज हूं तो ब्रह्म क्या है? अकर्ता। ब्रह्म तो करता नहीं कुछ है, वो सबसे निकम्मा आदमी है, आदमी भी नहीं है क्योंकि उसका फॉर्म नहीं है। अच्छा, ब्राह्मण आज अकर्ता है कि उसके पहले भी अकर्ता था? हमेशा ही अकर्ता है। तो अगर मेरे को आज ज्ञान हुआ कि मैं आज अकर्ता हूं तो इसके पहले क्या मैं करता था? नहीं था, मैं कभी भी करता नहीं था। तो मैं अगर करता नहीं था तो पीछे के जो कर्म हमने किए हैं, पाप पुण्य जिसका फल अभी तक आया नहीं है, वो क्या होगा? खत्म हो गया कि नहीं? हमने किया ही नहीं है।
तो हम पहले से ही निकम्मे थे।
अब पहले से ही निकम्मे थे, मगर मालूम नहीं था हमें ना, हमें मालूम नहीं था। हमको आज पता लगा कि मैं निकम्मा ब्राह्मण हूं। जब आज पता लगा मैं निकम्मा ब्राह्मण हूं तो क्या पीछे दो दिन आगे क्या वो करता था ब्राह्मण? काम करता था ब्राह्मण? नहीं, तब भी नहीं करता था। तो इसका मतलब हुआ कि मैं बराबर अकर्ता ब्राह्मण था पीछे भी। तो पिछले लाइफ में जो काम किए उसके पाप पुण्य जो इस लाइफ में अभी नहीं मिले, आगे आने वाले हैं, उनका क्या होगा?
संचित कर।
तो कहते हैं मुच्यन्ते तेपि कर्म भी, सारे कर्म आपके खत्म हो गए। कब होगा ये? ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, जो मैंने कहा है उसको अगर आप पालन करोगे तो। कैसे पालन करोगे? श्रद्धा पूर्वक, एवं उसमें गलती नहीं निकालोगे। अगर आप गलती निकालना शुरू करोगे तो आप पालन नहीं करोगे। समझ में आया? नहीं समझ आया तो हाथ उठाओ, अभी उठाओ।
समझ में आया, याद रहेगा।
मुच्चन्ते ते मानवा। अच्छा, मगर अब दूसरे जो नहीं सुनते हैं, जो भगवान ने कहा वैसा नहीं करते हैं, उसमें कौन है? हम लोग सब हैं। सब समझ में आ गया, साइंस समझ में आ गया, विज्ञान समझ में आ गया, फिर भी नहीं करते हैं। उनका क्या होता है? ये तू एतद अभ्यसुयंत है, जो उसमें से नुक्स निकालता है कर्मयोग में से। पता नहीं भगवान है भी कि नहीं, उसकी खुशी के लिए। क्या उसकी खुशी है? हमको तो अपनी खुशी के लिए करना है। सारी दुनिया कर रही है, भेड़ चाल में सब लगी हुई है, तब अपनी खुशी के लिए कह रहे हैं। और गीता कहती है भगवान की खुशी के लिए करो। कोई बंदा तो नजर नहीं आता ऐसा जो कर रहा हो भगवान की खुशी के लिए, तो कहीं मैं बेवकूफ ना बन जाऊं। सारा कर्मयोग सुनने के बाद में अर्जुन के मन में एक शंका पैदा हुई कि भगवान क्या कर्मयोग पहली बार मेरे ऊपर प्रयोग कर रहे हैं क्या? एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? तो भगवान समझ गए। तो भगवान साथ साथ कहते हैं कि ये कर्मयोग का पाठ मैंने सृष्टि के शुरू में सूर्य को बताया था, और सूर्य आज तक करता आ रहा है कर्मयोग। सूर्य करता आ रहा है, सारी सृष्टि करती आ रही है। सर्व ज्ञान विमुणास्तान विद्धि नष्टान अचेत स। बोले ये आदमी अचेतस है। अचेतस मतलब अविवेकी है, इसने विवेक नहीं किया, सोचा ही नहीं इसने। कितनी महत्वपूर्ण चीज है, कितना लाभ देने वाली ये चीज है, उसने सोचा ही नहीं। कहते हैं सर्व ज्ञान विमूढ़ा, सब किस्म का ज्ञान होने के कहते हैं फिर भी वो मूढ़ है। मूढ़ है ऐसा आदमी। तान विद्धि नष्टान अचेत स, बोलो उसका जीवन नष्ट हो गया। क्यों नष्ट हुआ? अचेत स, अविवेकी है, उसने विवेक नहीं किया। मैंने जो कहा उसने समझा नहीं ठीक से, उसने उसका लाभ नहीं लिया। इसका लाभ आप किस योनि में ले सकते हो? दूसरी योनि में ले सकते हो ये लाभ कर्मयोग का? दूसरी योनि में आपको कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। कर्म करने की स्वतंत्रता केवल आपको मनुष्य योनि में है। और अगर इस मनुष्य योनि में अगर इसका आपने लाभ नहीं लिया, इतना विज्ञान जानने के बाद में भी अगर आपने लाभ नहीं लिया, तो आपको क्या कहेंगे?
वो याद रहता है।
विमूढ़, नॉट मूढ़, विशेष रूप में मूढ़। केवल मूढ़ नहीं, विमूढ़ है, विशेष रूप से आप मूढ़ हो। अचेतस, आप अविवेकी भी हो, आपने विचार नहीं किया इसके ऊपर में। तो ऐसे लोग का विजन क्या है? बोलते हैं फॉल्टी है विजन उसका, उसका विजन कुछ नहीं है, इज थॉटलेस, विचार ही नहीं किया उसने। विजन भी गलत है, नकारात्मक सोच है उसकी, निगेटिव विजन है उसका। भगवान कहते हैं वो थॉटलेस भी है, होपलेस भी है, उसका कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, उस संख्या में हम सब हैं। आप अपने आप को अलग नहीं समझ रहे कि अब उसे बाहर करें, हम सब उसी भीड़ के अंदर हैं। अविवेकी हैं हम लोग, और उन्होंने रास्ता नहीं चुना। दे आर ऑल्सो पाथलेस। कर्मयोग एक रास्ता है कि जो कर्म के जरिए आप भगवान से जुड़ सकते हो, वो आपने फायदा नहीं दिया। बहुत डिफिकल्ट है, क्या करने हो? डिफिकल्ट समझ आता है? अपनी खुशी के नहीं, भगवान की खुशी के लिए करो, इतना ही तो है। अब कर्मयोग आपको अगर छोटे बच्चों को समझाना हो, केजी क्लास वन क्लास टू, उनको पूछो आपने होमवर्क नहीं किया, क्या भगवान खुश होंगे नहीं होंगे? वो भी उत्तर दे देगा आपको। यही कर्मयोग है उन लोग के लिए, भगवान खुश होंगे कि नहीं, उनकी लाइफ के अंदर भगवान घुस गया। हम लोग बूढ़े हो गए, भगवान घुसता नहीं है। अब भगवान कहते हैं, यहां पर शंकराचार्य जी कहते हैं, तो फिर वे लोग किस कारण से आपके मत के अनुसार नहीं चलते? कुछ लोग नहीं चलते ना, कुछ लोग क्या, हम लोग नहीं चलते हैं। तो शंकराचार्य जी लिखते हैं, वे लोग किस कारण से आपके मत के अनुसार नहीं चलते हैं? दूसरे के धर्म का अनुष्ठान करते हैं और स्वधर्माचरण नहीं करते। दूसरे का धर्म का आचरण करते हैं, अपना नहीं करते हैं। आपके प्रतिकूल होकर आपके शासन को उल्लंघन करने के दोष क्यों नहीं, दोष से क्यों नहीं डरते? इसमें क्या कारण है? इस पर कहते हैं, देखो हम लोग कई बार जो है ना, हम लोग गलत कर रहे हैं वो भी नहीं समझ में आता है कि हमने गलती की है, ऐसा भी नहीं समझ में आता है। हम दोषी हैं ऐसा भी नहीं समझ में आता है। आपको कभी फील होता है कि मैं कर्मयोग नहीं कर रहा हूं तो मैं भगवान का दोषी हूं? कभी आया ऐसा विचार आपके? मैं अधर्म कर रहा हूं, कभी आया? कभी नहीं आया। हम अपने आप को दोषी भी नहीं मानते कि भगवान ने उपदेश दिया है और भगवान की बात नहीं मान रहे हैं इसलिए हम अधर्म कर रहे हैं, हम दोषी हैं, ऐसी बात भी नहीं आती अपने मन में। तो भगवान कहते हैं, ऐसा क्यों है? इजिप्ट उसके मन में चल रहा है अर्जुन के, इतना अच्छा अगर आपका कर्म योग है तो लोग क्यों नहीं पालन करते, लोग अपने आप को दोषी क्यों नहीं समझते हैं? तो भगवान कहते हैं, देखो सुनो,
सदृशं चेष्टते स्वस्याः,
सदृशं चेष्टते स्वस्याः,
प्रकृतिर्ज्ञानवानपि,
प्रकृतिर्ज्ञानवानपि,
प्रकृतिं यान्ति भूतानि,
प्रकृतिं यान्ति भूतानि,
निग्रह किं करिष्यति,
निग्रह किं करिष्यति,
सदृशं चेष्टते स्वस्याः, प्रकृतिर्ज्ञानवानपि, प्रकृतिं यान्ति भूतानि, निग्रह किं करिष्यति।
सदृशं, सदृशं मतलब अनुरूपम है, किसके अनुरूप? स्वस्या प्रकृति, स्वस्या में अपनी प्रकृति। क्यों नहीं लोग पालन करते हैं? बोले सब अपनी प्रकृति के हिसाब से चल रहे हैं, सब अपनी अपनी प्रकृति के हिसाब से अपने कर्म कर रहे हैं। अच्छा, ये प्रकृति क्या है? आपकी वासना है, आपकी वासना है। और कौन लोग करते हैं? बोले ज्ञानी भी करते हैं। ज्ञानी का मतलब यहां आत्मज्ञानी की बात नहीं है, ज्ञानी का मतलब पढ़े लिखे लोग भी, पढ़े लिखे लोग भी आपका कर्मियों की बात नहीं मानते हैं। तो क्या करते हैं? बोले अपनी वासना के अनुसार काम करते हैं, आपकी अपनी प्रकृति अपने स्वभाव के अनुसार सब काम कर रहे हैं। हम सब वही कर रहे हैं ना, जिसका जो नेचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई क्लीनर है, सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। बोल भगवान कह रहे हैं कि ये प्रकृतिम यान्ति भूतानि, ये प्रकृति उनको घुमा रही है, उसके हिसाब से सब अपने अपने काम करें। निग्रह किम करिष्यति, तो निग्रह कैसे करें, कंट्रोल कैसे करें, कंट्रोल कैसे करें? सब अगर अपनी प्रकृति के हिसाब से अगर काम करें तो भगवान जो कह रहे हैं सब उसके विपरीत काम कर रहे हैं। भगवान कहते हैं सच बोलो, आपका स्वभाव बोलता है झूठ बोलो, तो आप तो उल्टा काम कर रहे हो ना। क्यों झूठ बोलो? प्रकृति आपकी करवा रही है, आप विपरीत काम करते हो। ठीक है, तो ऐसे कुछ उदाहरण वगैरह कुछ बताइए, एग्जाम्पल। देखो जितने भी स्वामी जी लोग आते हैं ना, सबके सब आपको बोलेंगे कर्म योग करो, सेवा करो, मिशन में कर्म योग करो, दान दो। मगर आप लोग सुनते हैं? सुनते नहीं। क्यों नहीं सुनते हैं? वो कर्म योग करने को जब कहते हैं तो अपने लिए तो नहीं कह रहे हैं, उससे लाभ उनको तो नहीं होने वाला है। किसको लाभ होगा कर्म योग करने से? किसका मन शुद्ध होगा? क्या उस स्वामी का या ब्रह्मचारी का मन शुद्ध होगा? नहीं, आपका मन शुद्ध होगा। फिर आप क्यों नहीं बात सुनते हो? प्रकृति, आपकी प्रकृति आपको करने नहीं देती। जब हम लोग वेदांत कोर्स में थे तो ब्रह्मचारियों को कहा गया था कि आपको 5:30 बजे मंदिर में पहुंचना है वेदिक चैंटिंग के लिए। उसके पहले आपको नहाना भी है, उसके पहले आपको जो साधना दी गई है वो भी करना है। वह ब्रह्मचारी पहुंच नहीं पाते थे। क्यों नहीं पहुंच पाते थे? प्रकृति, सवेरे 6 बजे तक सोना है, आपकी आदत बन गई है, आपका स्वभाव बन गया है ऐसा। और अगर जबरदस्ती करो तो पता लगता था कि बेड से अभी उतर के आया है। पता लगता है नहाया नहीं है, चेहरे से पता नहीं लग जाता है।
क्लास से निकाल देते थे समी जी।
तो क्यों नहीं कहा? अब कहां जा रहा है? वहां पर गुरु आपको कह रहा है कि रोज 5:30 बजे वैदिक चैंटिंग के लिए आना है। क्यों नहीं आते हैं? स्वभाव, आदत डाल रखी है, प्रकृति ऐसी है। गुरु जी बताते हैं कि अगर एक कुत्ते की पूंछ को पाइप के अंदर 100 बरस भी अगर उसको डाल के सीधा रखने की चेष्टा करो, मगर उसका स्वभाव है कि जैसे ही पाइप हटाओगे तो फिर क्या है? वो प्रकृति, स्वभाव। गुरुदेव कहते हैं कि ये प्रकृति क्या है? बोले आपकी वासना है। आपकी वासना जो है, आपके इम्प्रिंट जो है, आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, जो आपके जो इंप्रेशंस हैं, वो आपको फोर्स करते हैं काम करने के लिए। आपके मन में जो भी डिजायर आती है वो आपकी वासना के अनुसार आती है, वो आपको फोर्स करते हैं। तो अभी दो चीजें यहां पर हो गई, एक तो हमारी वासना है और एक ज्ञान है। वासना एक किस्म से करने को कह रहा है और ज्ञान कुछ दूसरा करने को कह रहा है। हमारी वासना कहती है कि अपनी खुशी के लिए करो, और जो है कर्मयोग कहता है कि आप, ज्ञान जो कहता है कि आप ईश्वर की खुशी के लिए करो। दो चीजें हैं ना, मगर हम करते नहीं है। क्यों नहीं करते हैं? तो लगता है दोनों में एक गैप है कहीं पर। मेरे स्वभाव में और ज्ञान के अंदर में कुछ गैप है, हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम किसी तरीके से इसको जोड़ दें, ये जो गैप जो है हमारे नेचर के अंदर और ज्ञान के अंदर, इसको अगर किसी किस्म से जोड़ दिया जाए तो नेचर बदली होगा कि नहीं होगा? स्वभाव बदली होगा कि नहीं? अच्छा, ये स्वभाव बनाया किसने है? हमने आदत डाली है। छुड़ाएगा कौन? हमको चेष्टा करने को। एक आदमी बहुत गुस्सा वाला था, वो हर छोटी बात पर गुस्सा कर लेता था। तो ऑफिस गया, ऑफिस में जो है एक दिन उनके बॉस ने उसको जो है थोड़ा सा कुछ कह दिया होगा, इसको गुस्सा आ गया बहुत। और उसकी पत्नी को पता था कि इसको गुस्सा काफी आता है। तो इस व्यक्ति के एक मित्र ने कह दिया कि आज आपके पति देव जो है काफी गुस्से में हैं, पत्नी घर में है, उनको बता दिया कि आज गुस्सा है उनको। अब वो बेचारी सारा घर ठीक ठाक करके एकदम फिट फाट करके रख दिया, शाम को पति देव आए तो देखा सब कुछ हो रहा है, बोले चाल आओ, चाय ले आई, चाय ले आई, चाय के साथ में एक चम्मच भी दिया हुआ था, तो पिया चाय। बोले तुमको मालूम नहीं हम कैसी चाय पीते हैं, क्या मेरे को डायबिटीज है, तुमने चीनी क्यों नहीं दिया इसमें। तो बोला चीनी उसमें डाला हुआ है, चम्मच भी मैंने आपको दिया है, आप कृपया इसको घोल लें। घोल लिया, चाय मीठी हो गई। देखो इस एग्जाम्पल का इसलिए मैंने आपको कहा, हमारी प्रकृति चाय की तरह जो है वो कड़वी हो सकती है, शास्त्र का ज्ञान चीनी है, उस कड़वी चाय के अंदर हमने चीनी को डाल दिया मगर उसको मिलाया नहीं तो चाय क्या रही। हम आपको इतना शास्त्र का ज्ञान दे के हम परेशान हो गए, आप घोलते नहीं हो उसके अंदर, आपका स्वभाव अगर ऐसा है।
नेक्स्ट क्लास चम्मच रखना, दो दर्जन चम्मच।
अच्छा अब इस एग्जाम्पल से आपको पता लगता है कि इन्हें स्वभाव बदला जा सकता है। अगर चाय जो है उसमें मिठास नहीं है, कड़वी है, और उसमें चीनी डालने से वो मीठी हो सकती है, उसी तरह से अगर मेरा स्वभाव कड़वा है, शास्त्र का ज्ञान डाल के उसके अंदर हम उसको घोल दे तो वो स्वभाव बदली होगा कि नहीं होगा। स्वभाव बदली होगा, जरूर होगा। तो ये घोलने का काम किसको करना है?
हमें को करना।
अगर आपको करना है आप तब तक नहीं करोगे जब तक आपको उसका पूरा विज्ञान ठीक से नहीं समझ में आएगा। हमने कम से कम अपने जितने भी हमने लेक्चर दिए होंगे कर्मयोग, तो मेरा हर रोज आ जाता है एक बार, भगवान की प्रसन्नता। आप लोगों ने आपको याद हो गया होगा भगवान की प्रसन्नता, हर रोज आता है भगवान की प्रसन्नता, क्योंकि ये एकमात्र साधन और दूसरा साधन नहीं है। अब पहला स्टेप क्या है? मन की शुद्धता। मन की शुद्धता इसके बिना होगा नहीं, नहीं करोगे तो आप क्या होगा, आपकी ये जीवन नष्ट हो गया। नष्ट हो गया, मृत्यु नहीं होगी, आप रियलाइज नहीं होगे। अच्छा देखो, हमने अपना स्वभाव बना लिया कि हमने सिगरेट पीना है या अपने स्वामी जी के भाषा के अंदर लाल पानी या नीला पानी आप पीते हो। तो किसने बनाया? भगवान ने तो नहीं भेजा मेरे पास में सिगरेट कि तुम सिगरेट पियो। किसने स्वभाव बनाया? हमने बनाया। अब छोड़ना होगा तो किसको छोड़ना होगा? हमें छोड़ना है। तो स्वभाव अगर हमने बनाया अपना तो स्वभाव हम बदल भी सकते हैं। सदृश्यम चेष्टते स्वस्यात्। अगर ये शास्त्र, ये मतलब सत्य है कि आप अपना स्वभाव नहीं बदल सकते तो शास्त्र सब बेकार है, सब शास्त्र बेकार है। क्योंकि हम बदल सकते हैं इसलिए शास्त्र उपयोगी हैं। सदृश्यम चेष्टते स्वस्या प्रकृति, अगर इसको हम बदल नहीं सकते थे, उसमें कोई अगर गुंजाइश बदलने के नहीं है, तब तो ये शास्त्र सारे के सारे बेकार। मगर हम बदल सकते हैं थॉट बाय थॉट, एक्शन बाय एक्शन, एक एक एक्शन से, एक एक थॉट से हम उसको बदल सकते हैं अपने स्वभाव को। तो अगर हम ऐसा कर दे तो ठीक हो जाएगा। एक और एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे आपकी दीवार जो है नीली दीवार है, ब्लू कलर है, आपको व्हाइट करना है। एक कोट लगाया, थोड़ा सा व्हाइट हुआ मगर ब्लू नजर आता है, दो कोट लगाया, तीन कोट लगाया, चार कोट किया, वाइट हो जाएगा। अगर मेरा स्वभाव नीला है, उसको अगर सफेद करना है, एक के बाद एक कोट देते जाओ, चेष्टा करते जाओ, सफेद होगा, वो होगा कि नहीं, हो जाएगा। तो अगर आपकी वासना के अनुसार, हमारा सिस्टम क्या है, हमारे सिस्टम के अंदर देखा गया है कि आपकी वासना भी के अनुसार आपके बुद्धि में डिजायर आती है। जब डिजायर आती है तो फिर मन के पास में जाता है, मन संकल्प विकल्प करता है कैसे इसको फुलफिल करें, फिर आप एक डिसीजन ले लेते हो, फिर आप अपने कर्मेंद्रियों को बोलते हो काम ऐसे करो, एक्शन हो जाता है। तो नियम यह है कि अगर आपके मन में एक अच्छी डिजायर आ जाए तो उसको तुरंत करो। अच्छी डिजायर मतलब भगवान की प्रसन्नता के करने के लिए कोई अगर एक इच्छा आपको सजग हो जाए, इच्छा आ जाए, तो बोलते उसको तुरंत कर दो, तुरंत कर दो। और दूसरे किस्म की हो, उसको क्या करें, तो बोलो उसको यत्न करके उसको रोको। देखो एक चीज है, पास्ट में जो हम कर्म कर चुके हैं या जो वासना बन चुकी है उसको अभी कांट अनडू इट, कुछ नहीं कर सकते उसमें। मगर जब वो एक्सप्रेस होती है उस टाइम हम कंट्रोल कर सकते हैं। आया समझ में आपको? जो हमने काम आगे पीछे पीछे कर दिया पास्ट में, उसके अनुसार कर्मफल तो आएगा, उसके अनुसार हमारी डिजायर्स भी आएंगी, उसको हम नहीं रोक सकते। मगर जब उत्पन्न हो डिजायर, उसको कंट्रोल करने का अधिकार मेरे ऊपर में है, मेरे पास है कंट्रोल। तो कैसे कंट्रोल करें, तो भगवान अगले श्लोक में बताते हैं।
इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे,
इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे,
रागद्वेषो व्यवस्थितौ,
रागद्वेषो व्यवस्थितौ,
तयोर्नवशमागच्छेत्,
तयोर्वशमागच्छेत्,
तौ यस्य परिपन्थिनौ, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे, रागद्वेषो व्यवस्थितौ, तयोर्नवशमागच्छेत्, तौ यस्य परिपन्थिनौ।
इंद्रियस्य इंद्रियार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ। इंद्रियस्य जो हमारी इंद्रियां हैं, वो इंद्रियस अर्थ, इंद्रियस अर्थ मतलब सेंस ऑब्जेक्ट्स, सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑब्जेक्ट्स के अंदर में राग और द्वेष हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं। सेंस ऑब्जेक्ट कहां है, बाहर है। राग द्वेष कहां है, भीतर है मन में। सेंस ऑब्जेक्ट कितने हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांच सेंस ऑब्जेक्ट हैं। तो इनके प्रति जो है राग द्वेष सबका है, और सबका अलग अलग राग द्वेष है। लाइक्स एंड डिसलाइक्स सब आदमी की अलग अलग हैं, है ना। दस आदमियों को दस चीजें दिखा दो, सबकी दस पसंद होगी, अलग अलग होंगी, सबकी अलग अलग पसंद है। राग किसमें होता है, इष्ट वस्तु को मिल जाने से राग होता है, जो हमें पसंद है। अनिष्ट वस्तु उसके साथ द्वेष होता है। तो हम लोगों ने सारी दुनिया को बांटा हुआ है, लाइक्स डिसलाइक्स, ये हमें पसंद है, वो पसंद नहीं है, बंटवारा किया हुआ है। अच्छा, राग द्वेष में भी डिफरेंट लेवल है, डिफरेंट लेवल है। क्या डिफरेंट लेवल है? एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग राग द्वेष होते हैं, वो सिंपल नहीं है, वो मेरे ऊपर शासन करते हैं, मेरे से जोर से काम करवाते हैं, वो जोर से करवाते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग लाइक्स है, ऐसा हो सकता है मैं इसके बिना नहीं रह सकता, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। स्ट्रॉन्ग लाइक्स, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक क्या होगा? आई हेट दिस पर्सन, आई डोंट वॉन्ट टू सी हिम, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है। और कुछ सिंपल डिसलाइक्स होते हैं, हम उसे पसंद नहीं करते हैं, तो ठीक है, अगर कैंप में आ रहा है, हम लोग शिकागो से दोनों आदमी एक साथ जा रहे हैं, तो ठीक है, चार दिन किसी तरीके से एक कमरे में काट लेंगे। आया समझ में आपको? स्ट्रॉन्ग लाइक डिसलाइक नहीं है, नॉर्मली हम उसे पसंद नहीं करते हैं, पर चूंकि ये शिकागो से आ रहा है, हमारे साथ ही जा रहा है, चार दिन किसी तरीके से एक रूम शेयर कर लेंगे, ठीक है। और बहुत लोग तो राग एंड द्वेष में बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं, बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं। पतंजलि कहते हैं राग द्वेष को क्लेश कहते हैं, क्लेश। राग भी क्लेश है, द्वेष भी क्लेश है। तो क्या इसको हम सहजता से हटा सकते हैं क्या? ना, यू कांट इरेज इट, लाइक ए पेंसिल से लिख दिया उसको इरेज कर दिया, ऐसा सिंपल नहीं है, इतना सिंपल नहीं। इफ आई हेट सम पर्सन आई कांट स्टार्ट लविंग हिम विद इन टू मिनट्स, इम्पॉसिबल। होता है क्या ऐसा? या उल्टा ये भी नहीं हो सकता, हम अपने दोस्त को एक सेकंड में हेट करना भी नहीं शुरू कर सकते, इट इज नॉट दैट सिंपल। तो क्या करें, क्या करें? तो ऐसा मत कहो कि भाई मेरा तो यही नेचर है, आप अपने आप को एडजस्ट कर लो। लोग ऐसा कहते हैं, मेरा तो यही नेचर है, आप एडजस्ट कर लो। हम एडजस्ट नहीं करेंगे, आप एडजस्ट कर लो। बच्चे लोग टी शर्ट पहन कर चलते हैं, डोंट ट्राई टू चेंज मी, आप चेंज होना हो जाओ, यू डोंट ट्राई टू चेंज मी, मेरा ये नेचर है, ऐसा ही मेरा स्वभाव है। तो कैसे राग द्वेष बदले हैं? तो बोलते तयो नवसम आगच्छेत, भगवान आपको उपाय बता रहे हैं। आप अपना सिचुएशंस को नहीं चेंज कर सकते, नंबर वन। नंबर टू, राग और द्वेष आपके भीतर हैं, वो आएंगे। भगवान कहते हैं तयो नवसम आगच्छेत, ये सब देखो हमारे जितनी भी वासना है ना, सबकॉन्शियस माइंड में, बट दे आर नॉट डिस्टर्बिंग अस। अगर आपको पता लग जाए कि आपके भीतर में कितनी वासनाएं हैं, तो वी ऑल विल गो क्रेजी, पागल हो जाएंगे, एकदम पागल हो जाएंगे। ये तो जब सामने वस्तु आती है तब वो हमारी लाइक डिसलाइक एक्सप्रेस होती है, ये ले कि ना ले। दे किनारे तब वो एक्सप्रेस होता है। तो कहते हैं कि अगर आपके मन में अगर इच्छा आ गई, वस्तु देखी आपके मन में इच्छा आ गई, या कुछ आपने एक्शन लिया, आपने बच्चे ने कुछ कह दिया, आपके मन में क्रोध आ गया और आपने हाथ उठाया, तो कहते हैं कि उस टाइम में आपको सोचना चाहिए कि इसको थोड़ा सा उसको टाइम दो। टाइम दो मतलब दो सेकंड, पांच सेकंड, एक मिनट, दो मिनट, अपने हाथ को कहो एक मिनट रुको, एक मिनट, बस वो एक मिनट के अंदर वो आपका काम हो जाएगा। क्रोध आपके मन में आया है, आपने हाथ भी उठा दिया बच्चे के ऊपर में, उठा है हाथ, मगर आप अपने आप को कहो कि हाथ अभी तुम दो, एक मिनट के लिए ठीक रहो, ऐसे ही रहो, एक मिनट के अंदर आपके विचार बदल जाएंगे, क्योंकि वृत्ति इतनी फास्ट बदलती है, आपका क्रोध चला जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि ये एक तरीका ये है, अच्छी वृत्ति आए तुरंत कर दो, इमीडिएटली कर दो, उसको टाइम अगर दिया आपके मन में आया कि दान देना है अशोक जी को अभी दो तुरंत, डोंट डिले, आपने अगर डिले किया कल सवेरे देंगे, गॉन, विचार बदल जाएगा, बदल जाता है, आप कर सोच के देखना, होता है ऐसा, विचार बदल जाता है। कोई भी नेक काम करने के लिए जो इच्छा आती है ना उसको उसी टाइम कर देना चाहिए, नहीं तो आप क्या करोगे, नहीं नहीं नहीं, भगवान तो ऐसे ही खुश हैं, हम उनको पैसा दे तब भी खुश हैं, नहीं है तब भी खुश हैं। कहते हैं ये कर देना चाहिए। ही अस्य परिपंथिनो, बोले ये चोर हैं, ये आपके कल्याण मार्ग में विघ्न डालते हैं, ये विघ्न हर्ता नहीं है, विघ्न करता है, गणेश जी विघ्न हर्ता हैं, विघ्न को हटाते हैं, मगर ये चोर, कौन चोर, राग द्वेष, ये क्या करते हैं, आप श्रेय मार्ग में चल रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, राग द्वेष आया आपको डीरेल कर दिया। भगवान कहते हैं इनसे आप बचो, ऐसा करने से आप बच सकते हो। राग द्वेष कैसे हैं, बोले चोर की तरह, क्यों कहा, ये सब परिपंथिनो, परिपंथिनो मतलब हाईवे रॉबर्स, चोर क्या करता है वो छिपा रहता है, हाईवे रॉबर्स भी देखो कहीं छिपे बैठे रहते हैं, आपके पुलिस वाले छिप के नहीं बैठते हैं, निकलता छिपे बैठे हैं, ऐसे ही बैठे रहते हैं। राग द्वेष क्या है, ये भी चोर है, छिपे बैठे हैं, जैसी वस्तु देखी बाहर आ गए, ये हमारे जो है श्रेय मार्ग के अंदर में, साधना मार्ग के अंदर में ये आपको ऑब्स्टिकल डालने वाले हैं, तो इनसे बचो। बचने का तरीका क्या है, जब ये मन में आए, जब आपको लगे कि मेरे से कुछ गलत काम होने जा रहा है, अपने को चेक करो, चेक करके सोचो कि अभी दो मिनट समय दो इनको, इस पर कल विचार करेंगे, देखिए आपको पास सोल्यूशन आ जाएगा, कल जैसे ही आपने उसके ऊपर डिले किया कि इसके ऊपर कल विचार करेंगे, आपके पास में हाथ में समय आ गया, कल तक आपका विचार बदल जाएगा, कोई सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। कर्मयोग आपको ठीक से समझ में आया, क्या है कर्मयोग, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए काम करना है, कोई नया काम नहीं करना है, केवल ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करना है, अभी अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, कल से जो है भाई, कल से सत्संग के जाने के बाद से अब ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करेंगे। ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कैसे करेंगे, क्या करने से ईश्वर प्रसन्न होंगे, उनका नौकर बनना होगा, तो हम लोग को संकल्प लेना होगा कि हम लोग भगवान के नौकर हैं, हम जो भी कर रहे हैं काम वो किसकी खुशी के लिए करेंगे, अगर भगवान खुश होगा तो हमारा यहाँ का जो बॉस है वो भी खुश होगा, नेचुरल खुश होगा वो, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो ये भी खुश होगा। आया साइंस समझ में, ओ छोटा सा थॉट प्लॉट देख लीजिए, मई सर्वानी कर्मानी से भगवान ने कहा सारे कर्म मेरे लिए करो, उसमें से कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं, जो करते हैं वो कर्म से मुक्त हो जाते हैं, पाप पुण्य सारे कर्म खत्म हो गए। जो नहीं करते हैं वो क्यों नहीं करते हैं? स्वभाव के कारण नहीं करते हैं, प्रकृति, अपनी प्रकृति के कारण नहीं करते हैं। तो क्या प्रकृति, पापी आदमी बराबर पापी रह जाएगा क्या? ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। वो अपने आप को बदल सकता है। कैसे बदले? तो भगवान कहते हैं शास्त्र में जैसा कहा है उसके हिसाब से आप करो तो बदलाव आएगा। इसीलिए भगवान ने कहा कि इंद्रिय से इंद्रियार्थे आपका राग द्वेष है, अपने को कंट्रोल करो, ये तुम्हारे हाईवे रॉबर्स हैं, ये आएंगे मगर तुमको इनके वश में नहीं जाना है, जैसा कहे वैसा करने शुरू कर दो, ऐसा नहीं। तो थॉट फ्लो अगर देखो ना, बड़ा सुंदर थॉट फ्लो है, कैसे करने को भगवान कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, स्वभाव के कारण नहीं कर रहे हैं, उनका ऐसा नेचर है। तो क्या पापी बराबर सारा जीवन पापी रहेगा क्या? नहीं, बदल सकता है। कैसे बदले? भगवान कहते हैं कि अपने राग द्वेष के बस में मत आ जाओ, राग द्वेष आएंगे, उनके बस में नहीं आओ, वहां पर अपना विवेक लगाओ, कंट्रोल करो अपने को। आया समझ में? ये चार पांच श्लोक का ये निष्कर्ष है, ये थॉट फ्लो जा रहा है इसे।